राधे जय जय माधव दैते गोकुल तारुणी मंडल मोहिते गोकुल तारुणी मंडल मोहिते राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते दामोदर रति वर्धन वेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे दामोदर राति वर्धन वेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते वृषभानुदाधि नव शशि लेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे वृषभानुदाधि नव शशि लेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते करुणां कुरु मयि करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते करुणां करो मयि करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दैते 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 हरे कृष्णा। आज श्री श्री राधाष्टमी का अति पावन दिवस है और श्रीमती राधा रानी के बारे में श्रवण कीर्तन करने के लिए बहुत शुभ अवसर। गौड़ीय वैष्णवों के लिए राधाष्टमी और श्रीमती राधा रानी का विशेष महत्व रहता है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी के बिना कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती, बल्कि यहां कहा जा सकता है कि गौड़ीय वैष्णवों के लिए श्रीमती राधा रानी ही आराध्य देवी है। वैसे कृष्ण प्रेम या कृष्ण भक्ति अलग अलग तरह से की जाती है, अलग अलग तरह के भावों में रसों में कृष्ण प्रेम किया जा सकता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि अलग अलग भाव जिनमें कि भगवान की भक्ति की जाती है उनको रस इसलिए कहते हैं क्योंकि इन अलग अलग तरह के भावों में अलग अलग स्वाद मिलता है। इस संसार में भी हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के संबंध होते हैं और इन अलग अलग संबंधों में अलग अलग तरह के रस या आनंद या स्वाद मिलते हैं। जैसे दो मित्र जब बहुत लंबे समय के बाद मिलते हैं तो आपस में उनको बहुत सुख मिलता है, आनंद मिलता है, पुरानी बातें करते हैं और आपस में कुछ न कुछ वो ऐसी बातचीत करते हैं और कार्य करते हैं जिससे कि उनको एक तरह का रस मिलता है। उधर जब माता पिता अपने बच्चों को बहुत लंबे समय के बाद मिलते हैं तो उनको एक और तरह का आनंद मिलता है, उनको भी एक स्वाद मिलता है उस संबंध में। या तो फिर जब पति और पत्नी बहुत लंबे समय के बाद मिलते हैं तो उनको भी एक तरह का आनंद मिलता है, तो वो स्वाद अलग होता है। इसी तरह से जब कोई सेवक अपने प्रभु को मिलता है बहुत लंबे समय के बाद या प्रभु अपने सेवक से मिलता है तो भी अलग तरह का स्वाद उसमें मिलता है। अभी कोई भी एक तरह का स्वाद में पूरी तरह से संतुष्ट इस संसार में नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति सोचता है कि मैंने अभी शादी कर ली है, अभी मुझे पति पत्नी का के रस का स्वाद मिल रहा है, अभी मुझे मित्र नहीं चाहिए, मुझे और कोई संबंध नहीं चाहिए। नहीं, क्योंकि संसार के किसी भी रस में पूरी संतुष्टि नहीं हो सकती, इसलिए हमें अलग अलग तरह के स्वाद चाहिए। किसी एक संबंध में हम संतुष्ट नहीं रह सकते, तो पति पत्नी के साथ साथ हमें मित्रों का संबंध चाहिए, माता पिता का संबंध चाहिए, अपने बच्चों का संबंध चाहिए, अलग अलग तरह के संबंध चाहिए। और ये सारे विविध प्रकार के रस या स्वाद, इनका आस्वादन करते करते हमें जीवन में थोड़ा बहुत जीने का जो है जीने की प्रेरणा मिलती है। नहीं तो संसार में क्या है वैसे, थोड़ा बहुत जो रस हमें मिलता है एक दो बूंद उसे तो हम जीते हैं, नहीं तो कड़वापन कितना है ये संसार में। थोड़ा बहुत यहां कुछ मिल रहा है इसलिए हम जीते हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद बताते हैं, रस की परिभाषा करते हैं। रस का मतलब है वो आनंद जिसे हमें किसी की सेवा करने में मिलती है। अभी माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, उसे कुछ आनंद मिलता है ना, तो वो एक तरह का रस है। तो पति अपने पत्नी की सेवा करते हैं, पत्नी पति की सेवा करते हैं, उसमें भी एक तरह का आनंद मिलता है, उसको वो रस कहते हैं। उसी तरह से मित्र एक दूसरे की सेवा करते हैं, वो एक तरह का रस है। तो इस तरह से संसार में जब हम किसी की सेवा करते हैं तो उसमें जो रस का स्वाद हमें मिलता है वो विशेष होता है। और हर एक सेवा में स्वाद अलग अलग होते हैं, लेकिन हमें जानना चाहिए कि अंततः ये सारे जो भी रस हैं ये भगवत सेवा के विकृत प्रतिबिंब हैं। वास्तव में ये सेवा हमें करनी चाहिए थी इसी भाव में भगवान के प्रति, लेकिन भगवान को भूल चुके हैं, इसलिए वही सेवा हम संसार में किसी व्यक्ति को कर रहे हैं। तो ये अलग अलग तरह के जो रस हैं उनको अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है, जाने जाते हैं। सबसे पहला है शांत। शांत मतलब जिसमें एक तरह की उदासीनता होती है, मतलब कि सेवा भावना ज्यादा प्रकट नहीं होती है, केवल एक तरह की जानने की भावना हो, एक महानता की भावना रहती है कि ये व्यक्ति बहुत महान है। जैसे कोई संसार में बहुत बड़ा आदमी है, नेता है इत्यादि, हम उनको जानते नहीं है, सेवा करने की इच्छा भी नहीं है, लेकिन सोचते कि हाँ ये बहुत बड़े आदमी है, ये एक तरह का शांत रस हो गया। तो उसी तरह से कई ऐसे भक्त होते हैं जो कि केवल भगवान की महानता को जानते हैं कि भगवान कितने महान है, तो ये शांत रस की भावना है। और आगे चल के फिर हम देखते हैं कि कई दासी की भावना में रहते हैं, दासी की भावना में रहते हुए वो प्रभु की सेवा करना चाहते हैं। जैसे यहां कोई नौकर अपने मालिक की सेवा करता है तो इसे दास्य रस कहते हैं। और आगे चल के मित्रों में भी जो रस होता है, सेवा की रस, सेवा का रस, उसे सख्य रस कहते हैं। वृंदावन में जो ग्वाल बाल कृष्ण भगवान के संग में जो रस का आस्वादन करते थे उसे सख्य रस कहते हैं। और आगे चल के वात्सल्य रस, जो रस माता पिता अपने बच्चों के प्रति रखते हैं, जो रस माता यशोदा ने कृष्ण भगवान के प्रति रखा उसे वात्सल्य रस कहते हैं। और अंततः माधुर्य रस, मतलब वो रस जो कि प्रेमी प्रेमिका के बीच में ये संसार में भी पाया जाता है, और जिस रस का आस्वादन वास्तव में वस्तुतः रूप में गोपियों ने कृष्ण भगवान की सेवा करते हुए अनुभव किया। तो ये संसार में जो भी रस है वो एक प्रतिबिंब है, असली रस कहां मिलता है, भगवान की सेवा में। तो जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो वास्तव में जो रस मिलना चाहिए हमें वो हमें प्राप्त हो जाता है। अब वैसे देखा जाए तो ये सारे जो रस हैं ये शुद्ध भक्ति के बुनियाद पे आधारित हैं। जब तक कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं बनता वो भगवान को इन अलग अलग रसों में सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि इस वक्त हमें नहीं मालूम कि हमारे आत्मा के जो संबंध है भगवान के प्रति वो क्या है, हम नहीं जानते इस बात को। हमें केवल इतना मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण है, परम भगवान है, हमारा आराध्य देव है, और किसी न किसी तरह से हम सेवा कर रहे हैं। हमारे हृदय में कितने सारे भौतिक विचार हैं, भौतिक कामनाएं हैं, गलत फहमियां हैं, भ्रम हैं, तो ये सब होते हुए किसी न किसी तरह से हम भगवान की सेवा करते आ रहे हैं। लेकिन शांत रस में पहुंचने के लिए दो गुणों की आवश्यकता है। पहले तो सारे भौतिक इच्छाओं का निवारण, कोई भी भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बात कि भगवान की महानता का ज्ञान। जब ये दो चीजें हो जाती हैं तो व्यक्ति शांत रस में स्थित होता है। और जब धीरे से इसका विकास होता है, इस भावना का विकास होता है और उसमें सेवा की भावना विकसित हो जाती है तो उसे दास्य रस कहते हैं। तो दास्य रस और सख्य रस दोनों प्रेम पे आधारित होते हैं, दोनों में वही गुण होते हैं कि कि दुखों का निवारण या भौतिक कलमशों का निवारण, और दूसरी बात भगवान की महानता का ज्ञान। ये शांत रस में भी होता है और दास्य रस में भी होता है, लेकिन दास्य रस में एक विशेष गुण होता है जो कि शांत रस में नहीं होता, और वो है सेवा की भावना, जिसमें भक्त अपने आप को सेवक मानता है और भगवान को प्रभु मानता है। तो देखिए, पहले शांत रस में दो गुण थे, अभी दास्य रस में कितने आ गए? तीन गुण आ गए, एक ज्यादा गुण आ गया। अभी जैसे जैसे रस और बढ़ता जाता है, प्रेम की तीव्रता बढ़ती रहती है, वैसे वैसे ये रस, ये सेवा की भावना को अलग अलग तरह से संबोधित किया जाता है। उसी तरह से इसी दास्य रस में जब और तीव्र भक्ति हो जाती है और सेवा में एक निकटता की भावना आ जाती है, जिसमें भक्त सोचने लगता है कि भक्त कृष्ण भगवान मेरे बराबर के हैं और मेरे मित्र हैं, उसे सख्य रस कहते हैं। सख्य रस में विशेषता क्या होती है कि भगवान अपने मित्रों के साथ में, भक्तों के साथ में रहते हैं, और ये भक्त भगवान को अपना प्रभु नहीं मानते। हम उम्र वाले या जो ग्वाल बाल होते थे वृंदावन में, वो कृष्ण को अपना ही साथी मानते थे, वो ये नहीं सोचते थे कि कृष्ण भगवान है। बहुत निकट का प्रेम था उनके बीच में। इस तरह से एक तरह का अपनापन हो जाता है। ये निकटता जो है ये दास्य रस में नहीं होती, क्योंकि दास्य रस में प्रभु और सेवक के बीच में एक थोड़ा अंतर रहता है, जिससे कि सेवक प्रभु के ज्यादा करीब नहीं आ सकता। इसीलिए कभी कभी भक्तों के बीच में भी हमें देखना चाहिए कि सख्य और दास्य दोनों बने रहे। ऐसा नहीं कि सख्य रस पर चलता रहे, एक दूसरे के कंधे पे चढ़ें, एक दूसरे से कुश्ती करें, झगड़ा लड़ाई करें, तो दास्य भावना भी होना आवश्यक है। क्योंकि जो ग्वाल बाल दास से सख्य रस करते थे, उसमें कोई भौतिक कलमश नहीं था, लेकिन यहां संसार में जो सख्य रस होता है उसमें भौतिक कलमश होते हैं। इसलिए भक्तों के बीच में जो मित्रता होती है, क्योंकि सभी लोग शुद्ध भक्ति के स्तर में स्थित नहीं होते, इसलिए यह दास्य रस पे आधारित होना चाहिए। अर्थात एक दूसरे के प्रति सेवा की भावना रखनी चाहिए, एक दूसरे को अपना प्रभु मानकर चलना चाहिए। इस तरह से हमारे भक्तों के बीच में जो मित्रता की भावना होगी, उसमें निकटता भी होगी और प्रेम भी चलता रहेगा। तो सख्य रस में ये एक अधिक विशेष गुण है, वो है समानता, कि भक्त भगवान को अपने से बराबर समझता है, जो कि दास्य रस में नहीं था। तो ये चौथा गुण आ गया सख्य रस में, जो कि दास्य रस में नहीं था। और जब भक्ति की भावना तीव्र होती जाती है, तो निकटता की भावना भी और बढ़ती जाती है, प्रेम और निकट और गाढ़ा होते जाता है। और ऐसे अवस्था में भक्त आ जाता है जब भक्त को इतना ही नहीं लगता कि भगवान मेरे बराबर के हैं, लेकिन वो सोचने लगते हैं कि मैं भगवान से श्रेष्ठ हूं। बराबर की बात तो दूर है, मैं भगवान से श्रेष्ठ हूं। दास्य रस में हमेशा भक्त सोचता है कि मैं निम्न श्रेणी में हूं, भगवान श्रेष्ठ है। सख्य रस में दोनों बराबर के हो जाते हैं, और वात्सल्य रस में भक्त सोचने लगते हैं कि भगवान मेरे ऊपर निर्भर है, मैं श्रेष्ठ ही नहीं लेकिन भगवान मेरे ऊपर निर्भर है। और कितने निर्भर है? इतने निर्भर है कि मैं अगर उनका देखभाल नहीं करूंगा तो शायद वो बीमार पड़ जाएंगे, मर जाएंगे, उनको कोई नुकसान पहुंच जाएगा। तो ये है वात्सल्य रस। तो इसमें शांत रस, दास्य रस, सख्य रस के गुण भी हैं, क्योंकि इसमें शुद्ध प्रेम, ये सारे शुद्ध प्रेम पे आधारित हैं, और शुद्ध प्रेम में कोई भौतिक कलमश नहीं होता। भगवान की महानता का ज्ञान होता है, लेकिन भगवान उसे ढक देते हैं। ऐसा नहीं कि यशोदा माता को नहीं मालूम था कि भगवान वो इनके बच्चे कृष्ण हैं और उनके बच्चे भगवान हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उस ज्ञान को ढक दिया था। इसलिए माता यशोदा नहीं जान पाई कि जिस बच्चे का लाड़ प्यार वो करती थी वो वास्तव में भगवान है। तो इस तरह से ये वात्सल्य रस की भावना आ गई। और वात्सल्य रस जब और गाढ़ा हो जाता है और तीव्र हो जाता है तो उस समय उसका परिवर्तन माधुरी रस या श्रृंगार रस में हो जाता है। इस रस में विशेष बात क्या है? इस रस में भक्ति की परिपूर्णता पाई जाती है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। इसमें इस प्रेम से भगवान श्री कृष्ण पूरी तरह से जीत लिए जाते हैं, खरीद लिए जाते हैं। जो भी कोई थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं अन्य रसों में वो यहां पूरी की जाती हैं। अर्थात ये माधुर्य रस जो है ये भक्ति या प्रेम का सर्वोच्च शिखर है। और ये माधुर्य रस भी जो प्रेमी और प्रेमिका के बीच में जो प्रेम होता है ये सबसे ऊंचा रस माना जाता है ये संसार में। इसलिए हम देखते हैं कि ये संसार में भी ये प्रेमी प्रेमिका का रस जो है सबसे ऊंचा होता है। ये विकृत रूप में भी पिछली बार शायद आपको बताए नहीं बताए याद नहीं, लेकिन एक बार एक भक्त हमसे मिले थे कई साल पहले जो कि परेशान थे क्योंकि उनकी कन्या उनकी पुत्री किसी दूसरे लड़के से विवाह करना चाहती थी और ये माता पिता के इच्छा के खिलाफ था। भक्ति में भी ज्यादा वो रुचि लड़का नहीं रखता था इसलिए ये ज्यादा दुखी थे माता पिता। लेकिन लड़की भक्ति कर रही थी लेकिन अभी इस लड़के से संबंध जोड़कर अपनी भक्ति में थोड़ी बहुत डगमगा गई थी, डामाडोल हो गई थी। तो उस समय माता पिता ने तो बहुत कोशिश की, आखिर में लड़की ने बात नहीं मानी, चली गई। तो माता पिता बड़े दुखी थे तो हम उनको थोड़ा शांत कराना चाहते थे तो हमने कहा कि देखो ये संसार का नियम है क्योंकि ये जो श्रृंगार रस है ना ये वात्सल्य रस से ज्यादा शक्तिशाली है क्योंकि क्योंकि इस उम्र में जो श्रृंगार में वहां उनको रस मिलेगा उस उम्र में तरुण और तरुणी को वो माता पिता के साथ में जो संबंध है उससे नहीं मिलेगा क्योंकि ये ज्यादा तीव्र है, ज्यादा शक्तिशाली है, तो आप रोक नहीं पाएंगे। और रोक पाएंगे भी तो फिर ज्यादा कष्ट होगा बाद में। अगर सुनती हैं तो ठीक है, नहीं सुन रही हैं तो क्या करें, ये संसार का नियम है। वैसे में इस संसार का नहीं, भगवान के धाम का नियम है और इसका विकृत रूप हम यहां देख रहे हैं। उस लड़की की गलती क्या थी? केवल कृष्ण को अपने प्रेम का केंद्र बनाने के बजाय किसी और भौतिक लड़के को बना दिया, बस यही उसकी गलती थी। तो इस तरह से जो श्रृंगार रस होता है ये सबसे ऊंचा होता है संसार में और इसके लिए व्यक्ति कुछ भी करता है। अभी अभी और एक थोड़े दिन पहले एक भक्त मिले थे जो कह रहे थे कि उनके ही पड़ोसी उस पड़ोस में कहीं उस महिला ने किसी अपने पति के अलावा किसी और व्यक्ति से संबंध जोड़ लिया था और बच्चों को पता चल गया, छोटे छोटे बच्चे थे, तो उस मां ने अपने बच्चों को मार दिया अपने प्रेमी के साथ में। तो देखिए हम सोचते हैं कि वात्सल्य प्रेम सबसे बड़ा होता है कि मां का प्रेम बच्चों के से ज्यादा कौन सा हो सकता है, लेकिन यहां देखिए कि बच्चों को भी मार दिया। अर्थात ये संसार में भी हमें अनुभव है कि ये जो श्रृंगार का रस होता है ये वात्सल्य से भी ज्यादा बढ़कर होता है। तो अगर संसार में भी इतना है तो भगवान के प्रेम में भक्ति में कितना और होगा, सोचिए। क्योंकि जो उस वस्तु में रहता है वो प्रतिबिंब में दिखाई पड़ता है तो प्रतिबिंब में भी वही गुण होंगे, केवल इतना है कि उसमें अस्तित्व नहीं रहता। जैसा कि अगर आपने पानी में नदी के तट पर अगर सेब का वृक्ष है, आम का वृक्ष है, केले का वृक्ष है, तो ये सारे प्रतिबिंब आप जल में देख रहे हैं। आम का प्रतिबिंब देख रहे हैं, सेब का देख रहे हैं और केले का देख रहे हैं। अभी प्रतिबिंब में जो आपको दिखाई पड़ रहा है वो आम जैसे का वैसे है, जैसे ही ठीक उसी तरह दिखाई पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये प्रतिबिंब है इसलिए आपको आम जो है वो काला रंग का नजर आएगा, नहीं, आम तो उसी रंग का नजर आएगा जो कि असलियत में है। और सेब लाल रंग का है तो आपको लाल रंग का ही नजर आएगा प्रतिबिंब में। ऐसा नहीं है कि प्रतिबिंब है इसलिए आपको सेब काला रंग नजर आया, नहीं, जैसा वस्तु है वैसे ही प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। तो ठीक उसी तरह से जो अलग अलग तरह के रस हैं भगवान के धाम में, वो यहां पे भी पाए जाते हैं, लेकिन अंतर क्या है? अंतर है वस्तु और प्रतिबिंब का। और जो व्यक्ति प्रतिबिंब के पीछे भागता है वो उसे सच्चा स्वाद कभी नहीं मिल सकता, बल्कि वो निराशी हो जाएगा। मान लो एक ऐसा व्यक्ति जो कि आम के प्रतिबिंब को जो जल में दिखाई पड़ रहा है उसके पीछे बार बार छलांग मार के उस आम को पकड़ने का प्रयास करता है, बेचारा है ना, देखता है कि आम है, आम दिख रहा है, एक बार कूदा और मिला नहीं, ऐसे अरे आम कहाँ गया, दिखाई तो पड़ रहा था आम, और फिर से बाहर आया, सोचा कि अभी निराश नहीं होऊंगा, अभी दिखाई पड़, अभी ठीक मैं पकड़ूंगा उसको, फिर से छलांग मारता, फिर से नहीं मिलता, और बार 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 ऐसे करता है, दिन रात करते रहता है। तो आप क्या कहेंगे उसे? मूर्ख कहेंगे ना। क्यों? क्योंकि वो उस आम को एक ऐसे जगह ढूंढ रहा है जहां वो आम है ही नहीं। आम तो कहीं और है, लेकिन उस आम का प्रतिबिंब उसे दिखाई पड़ रहा है, उसे लगता लग रहा है कि यही सच्ची बात है, यही वस्तु वास्तविक चीज है। लेकिन वास्तव में जो असली चीज है वो पेड़ पर है, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है, घूम के देख नहीं रहा है कि असली आम यहां, अगर यहां से मैं निकाल लूं तो मुझे अच्छा स्वाद मिल सकता है। तो उसी तरह संसार में लोग ये संसार की सेवा करके, संसारी लोगों की सेवा करके आशा रखते हैं कि मुझे ये आनंद मिलना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए इसमें, लेकिन देखते हैं कि चाहे ये दास्य रस हो, चाहे वात्सल्य रस हो, सख्य रस हो, माधुर्य रस हो, इसमें निराश ही निराश हो जाते हैं आदमी। कोई व्यक्ति संसार में कह सकता है कि किसी भी संबंध में मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं, किसी भी रस में, आप अपने जीवन में सोचिए, शत प्रतिशत संतुष्टि मिल सकती है? नहीं, क्योंकि यह संसार का संबंध है, यह संतुष्टि आपको पूरी तरह से दे ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी हमें जानना चाहिए कि यह संसार में भी रसों की श्रृंखला कैसे होती है, इनकी क्रम से कैसे इनकी वृद्धि होती है, विकास कैसे होता है। तो भगवान की भक्ति में भी ऐसा है। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जो गोपियों ने भगवान की सेवा की थी वो सबसे ऊंची मानी जाती है। रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेन वा कल्पिता। व्रजवधु वर्ग अर्थात गोपियों ने जिस तरह से भगवान की सेवा की, ऐसी सेवा कोई नहीं कर पाएगा। शिवजी बताते हैं भृगु मुनि को कि केवल जो भगवान के भक्त हैं वो कृष्ण को जान सकते हैं। मैं तो भक्त नहीं हूं इसलिए मैं नहीं जान सकता भगवान श्री कृष्ण को, लेकिन भक्तों में से सर्वश्रेष्ठ प्रहलाद है, ऐसा शिवजी कहते हैं। और आगे बताया जाता है कि प्रहलाद से भी श्रेष्ठ है पांडव, पांडवों से भी श्रेष्ठ है यदुकुल के जो सदस्य, द्वारका में निवास करने वाले। और यदुकुल के सदस्यों में से सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? यदुकुल में, यदुकुल के निवासियों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है? उद्धव। उद्धव सर्वश्रेष्ठ है, और उद्धव से भी श्रेष्ठ है वृंदावन की गोपियां। और कृष्ण उद्धव को इस बात का एहसास दिलाना चाहते थे, इसलिए कृष्ण भगवान ने उद्धव को वृंदावन भेजा और कहा कि मेरी ओर से ब्रजवासियों को और खास करके गोपियों को संदेश लेकर चले जाना, क्योंकि उद्धव को बतलाना चाहते थे कि गोपियों का प्रेम क्या है, जरा समझ लो। इसलिए उद्धव वहां गए और तब जाकर उनको समझ में आया कि गोपियों का प्रेम क्या है और मेरा प्रेम तो कुछ भी नहीं है इन गोपियों के सामने। ऐसा लगा उद्धव को कि मैं मेरा प्रेम तो तुच्छ है, कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से शिवजी ने ऐसे घोषणा की थी कि प्रहलाद सबसे अच्छे हैं, लेकिन आगे चलते चलते ये बताया जाता है कि गोपियां सर्वश्रेष्ठ प्रेम करती हैं भगवान श्री कृष्ण से। और ऐसे ब्रह्मा जी खुद बताते हैं कि वैसे मैं 60,000 वर्ष तक तपस्या करता रहा, किसलिए? केवल वृंदावन की गोपियां जो हैं उनके चरण कमलों का रज क्या है इसकी महिमा समझने के लिए मैं 60,000 वर्ष तपस्या करता था। लेकिन 60,000 वर्ष तपस्या करने के बाद भी मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ, मुझे पता नहीं चला, ज्ञान नहीं लगा मुझे मिला कि ये गोपियां कितनी महान है। और मेरी बात तो दूर है, अनंत शेष शिवजी और साक्षात लक्ष्मी देवी को भी इस बात का एहसास नहीं हुआ। दूसरी जगह भगवान श्री कृष्ण भी बताते हैं, मुझे ब्रह्मा जी, शिव जी और साक्षात लक्ष्मी जी भी इतने प्रिय नहीं हैं जितने कि वृंदावन की गोपियां हैं। तो इस तरह से ये श्रीमद ये गोपियों का स्थान है। तो देखिए कितना महान है सर्वश्रेष्ठ भक्त सारे आध्यात्मिक और भौतिक जगत में, जो माधुर्य रस में प्रेम करती हैं, जो द्वारका के महिषियां हैं रानियां, वो भी श्रृंगार रस में भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, लेकिन वो विवाहित अवस्था में, इसलिए उसको स्वकीय कहते हैं। और वृंदावन के गोपियों का जो प्रेम है वो परकीय रस में। वास्तव में संसार का भी एक सत्य है, कठोर सत्य है, कि संसार में भी परकीय रस जो है वो ज्यादा स्वादिष्ट रहता है स्वकीय रस से, देखा जाता है। इसलिए कितनी बार यह होता है कि पति अपने पत्नी का खून कर डालते हैं क्योंकि उनका कहीं और संबंध है, पत्नी अपने पति का खून कर डालती है क्योंकि उनका कोई बाहर संबंध है। ऐसे कितने ही उदाहरण अखबार में पढ़ते हैं और नाना जगह बातचीत चलती है, क्योंकि स्वकीय रस में जो रस मिलता है वो और उसका कोई स्वाद होता है, उसमें अनुभव करने वालों को पता है क्या है उसको हो सकता है। हमें ना तो स्वकीय का अनुभव है ना परकीय का है, तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जो अनुभवी व्यक्ति है ऐसा उनका कहना होता है। और जो अनुभव नहीं किए हैं लेकिन केवल देखने से पता चलता है कि संसार में ये है, इसलिए रूप गोस्वामी ने भी ऐसे ही कहा है कि इस तरह का प्रेम संसार में जितना तीव्र होता है, इसलिए इसकी तुलना देकर गोपियों की और जो द्वारका की रानी हैं उनके प्रेम का विश्लेषण किया है रूप गोस्वामी पाद में। और इसलिए बताया कि गोपियों का प्रेम द्वारका की रानियों के प्रेम से श्रेष्ठ माना जाता है। वास्तव में जहां तक लीला की बात है तो भगवान श्री कृष्ण ने सारे गोपियों से विवाह कर भी लिया था, लेकिन ये एक बहुत रहस्य की बात है। लेकिन जहां तक साधारणता जो चर्चा होती है तो वो तो एक परकीय रस है, क्योंकि परकीय रस का स्वाद ज्यादा भगवान को अच्छा लगता है। अब भगवान के लिए स्वकीय क्या और परकीय क्या, ये हमारे लिए सब निर्भर होता है, हमारे लिए सब लागू होता है, भगवान के लिए नहीं। क्योंकि ये विवाह का जो विवाह की सीमा है ये हमारे समाज में आवश्यक है कुछ नैतिकता बनाए रखने के लिए, धार्मिकता बनाए रखने के लिए, लेकिन भगवान के लिए तो कोई नीति की आवश्यकता नहीं, धर्म की आवश्यकता नहीं, वो तो नीति को धर्म को बनाने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण, तो उनके ऊपर भला कोई कानून कैसे लागू हो सकता है, वो तो स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं, कोई नियमों की पालन करने की आवश्यकता नहीं उनको, तो वो कहां भी कैसे भी संबंध रख सकते हैं, कौन उनको पूछ सकता है। लेकिन हमें पूछने वाले बहुत हैं और पूछने होना भी चाहिए। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण हालांकि उनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होते हैं फिर भी वो परकीय रस ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि एक लीला आती है, वृंदावन की लीला है, कि एक बार माता यशोदा ने सोचा कि मुझे राधा रानी का विवाह कृष्ण से करा देना चाहिए। तो जब राधा रानी आई थी कृष्ण के घर में, तो जैसे कि प्रथा है, जब किसी लड़की से अपने बेटे की शादी कराना है तो उस लड़की के हाथों पे मेहंदी वगैरह लगा देते हैं। तो जब मेहंदी लग जाता है और लड़की चली जाती है घर में, तो पता चलता है कि हाँ, इसका मतलब ये सामने वालों ने प्रस्ताव रखा है, कि लड़कों वालों ने प्रस्ताव रखा है, ये संदेश भेज रहे हैं उस मेहंदी के माध्यम से कि अभी हम चाहते हैं कि हमारी बेटे का विवाह आपकी बेटी से हो जाए। तो माता यशोदा ने अच्छी तरह से राधा रानी के हस्त कमलों में मेहंदी लगाकर राधा रानी को भेज दिया। जब राधा रानी अपने घर में गई, तो जब उनके माता पिता कीर्तिदा और विश्वभानु महाराज ने इस बात को देखा तो वो भी बड़े प्रसन्न हो गए। तो कुछ दहेज देना था तो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से हीरे जवाहरात सब मोती सब भर भर के भेज दिए। तो उस समय उसके पहले क्या हुआ कि राधा रानी बड़ी घबरा गई कि क्या होगा, सब लोग देखेंगे, क्या कहेंगे। तो राधा रानी ने जाकर एक कुंड में अपने हाथ धो लिए, क्योंकि मेहंदी निकालना चाहती थी। तो वो सारा जल जो है पीला बन गया, इसलिए उस कुंड को क्या कहते हैं, पीला पोखर, क्योंकि सारा जल पीला हो गया, पीला पोखर कहते हैं। पुकर 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 मतलब जो कुंड होता है, तो उसे ब्रजभाषा में पोखर बन जाते हैं, बंगाली में भी पुकुर कहते हैं, तो ये एक ही धातु से आता है। तो इस तरह से राधा रानी ने वहां जाकर अपने हाथ धो लिए, तो आज भी वो कुंड वहां पर है। और उस समय जब यशोदा माता और नंद महाराज देखा कि अरे उन्होंने इतना भेजा, हमें भी कुछ भेजना चाहिए, तो कृष्ण भगवान ने देखा कि माता यशोदा थोड़ी निराश हैं कि हमारे पास तो इतने हीरे मोती नहीं हैं, तो हम कहां से लाएंगे। तो कृष्ण भगवान ने कहा कोई बात नहीं। तो मुक्त कुंड के पास जाकर कृष्ण भगवान ने बीज बोया, वहां वो वृक्ष से मोती हीरे सब आने लगे, तो भर भर के वो भेंट में फिर से भेज दिए। तो शादी होने ही वाली थी कि उस समय पूर्णमासी की दादी, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये जो है मैं ज्योतिष हूं, इनका ये समय ठीक नहीं विवाह के लिए, अभी जो है कुछ अपने ज्योतिष में कुछ गड़बड़ है, तो अभी विवाह नहीं करना चाहिए। वास्तव में पूर्णमासी राधा कृष्ण के लीला को आगे बढ़ाने वाले के लिए एक मुख्य व्यक्ति है वहां। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर पूर्णमासी ने राधा कृष्ण का विवाह उस समय उसमें अनुमति क्यों नहीं दी। वास्तव में कोई ज्योतिष की बात नहीं थी, अगर राधा रानी और कृष्ण का विवाह हो जाता तो फिर उनका स्वकीय संबंध हो जाता, तो फिर पर के रस नहीं मिलता। असली आनंद रस तो कृष्ण को तब चाहिए जब राधा रानी का विवाह किसी और से हुआ और फिर वो राधा रानी के साथ में लीला करे, तब कृष्ण का जो माधुर्य रस का स्वाद बढ़ जाता था। अब कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसकी नकल हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कहना पड़ता है कि कहीं कोई कृष्ण की नकल ना करे, सोचे कि कृष्ण भगवान ने किया। यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्त देवेतरो जना, जैसे महान लोग करते हैं वैसे हम भी कर सकते हैं, हमें भी करना चाहिए। तो पूर्णमासी जानती थी अगर शादी हो गए सब गड़बड़ हो जाएगा, वृंदावन का रस ही खत्म हो जाएगा, माधुर रस, फिर कृष्ण भगवान क्या रासलीला करेंगे। रासलीला तो उनसे करते हैं भगवान जिनसे उन्होंने विवाह नहीं किए है, दूसरे और दूसरों के पत्नियों से रासलीला करते हैं, इसलिए तो लोग इतनी निंदा करते हैं भगवान श्री कृष्ण की, कि जो भौतिक दृष्टि से सबसे निंदनीय लीला है भगवान की, वो आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे प्रशंसनीय लीलाएं हैं। ये है विरोधाभास, ये है विचित्र बात कृष्ण लीला के बारे में। तो इस तरह से परकी रस का स्वाद जब तक नहीं होगा तो राधा कृष्ण का विवाह नहीं होगा। तो इस तरह से पूर्णमासी ने ये मना कर दिया और फिर राधा रानी का विवाह आगे चल के अभिमन्यु से हुआ, और फिर राधा रानी जावत में चली गई। वैसे राधा रानी का जन्म रावल में हुआ था, इसका वर्णन शाम को करेंगे। फिर आगे चल के वो बरसाना में गई और बरसाना में बड़ी हुई, जब कृष्ण भगवान नंदग्राम में थे तो वो बरसाना में थी, और बरसाना से रोज जाकर श्रीमती राधा रानी कृष्ण भगवान के लिए भोजन बनाया करते थे, प्रसाद बनाया करते थे, क्योंकि दुर्वासा मुनि का आशीर्वाद था श्रीमती राधा रानी के ऊपर। दुर्वासा मुनि आप जानते हैं कि शिवजी के अंशावतार हैं, और इसलिए शिवजी के गुण भी उनके अंदर थे। शिवजी बड़े अच्छे, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए उनका नाम है आशुतोष। आशु मतलब जल्दी, तोष मतलब संतोष होना, संतुष्ट होना। तो शिवजी बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन लोहे के बराबर हैं, इसलिए जितने जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, उतने जल्दी गर्म भी हो जाते हैं, गुस्से भी हो जाते हैं। तो दुर्वासा मुनि भी ऐसे थे। तो दुर्वासा मुनि इतने शाप देते थे कभी कभी कि सब लोग घबराते थे, लेकिन अगर उनको प्रसन्न किया जाए तो बहुत आशीर्वाद भी देते थे वो। इसलिए एक बार जब वृंदावन में आए थे तो श्रीमती राधा रानी ने उनकी बहुत सेवा की थी, और उस समय दुर्वासा मुनि ने आशीर्वाद दिया था कि तुम जो भी पकाओगी अमृत से भी ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तो ये बात फैल गई सब जगह कि दुर्वासा मुनि ने राधा रानी को ऐसे आशीर्वाद दिया है, और माता यशोदा के कानों में आ गई। तो माता यशोदा ने सोचा कि जो सबसे अच्छा पकाती है अमृत से ज्यादा, ये मेरे कृष्ण के लिए होना चाहिए। तो इसलिए जब नंद महाराज यशोदा मैया नंद ग्राम में चले गए वृंदावन से, और उसी समय वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी राधा रानी को लेकर रावल से लेकर वो यहां पर बरसाना में चले आए। और उस समय राधा रानी बरसाना से लेकर पावन सरोवर में जाती थी, और वहां पर रोज कृष्ण भगवान के लिए प्रसाद बनाया करते थे। तो इस तरह से लीला चलती रही। तो हम चर्चा कर रहे थे कि यह माधुरी रस सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसका रस जो है सबसे मीठा होता है, इसलिए उसको माधुरी कहते हैं, मधुर। जैसे जैसे रस बढ़ते रहते हैं, उस रस में जो वो आनंद मिलता है उसका मिठास बढ़ते रहता है, इसलिए सबसे ज्यादा मीठा रस जो होता है वो माधुरी रस में मिलता है। और माधुर रस में भक्ति करने वाले वृंदावन की गोपियां हजारों हजारों की संख्या में थी। स्कंद पुराण में बताया जाता है कि हजारों हजारों गोपियों में से 16,000 गोपियां प्रमुख मानी जाती हैं, और इन 16,000 गोपियों में से 108 गोपियां प्रमुख मानी जाती हैं। इन 108 गोपियों में से 8 गोपियां प्रमुख मानी जाती हैं, और इन 8 गोपियों में से 2 गोपियां प्रमुख मानी जाती हैं, और इन 2 गोपियों में से 1 गोपी प्रमुख मानी जाती है, और उनका नाम है श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी प्रमुख गोपी है वृंदावन की। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम कृष्ण भगवान के प्रति, उनकी भक्ति की कोई तुलना नहीं है, अतुल्य है। गोपियों में से भी सबसे ज्यादा भक्ति राधा रानी की है, इसलिए वो महाभाव की मूर्तिमान स्वरूप है। राधा का तत्व जो है, आज हम संध्या काल में शाम को इसकी चर्चा करेंगे। तो श्रीमती राधा रानी की भक्ति सबसे तीव्र है, सबसे ऊंचे भक्त श्रीमती राधा रानी है। अगर श्री कृष्ण आराध्य देव हैं, तो श्रीमती राधा रानी आराध्य भक्ति है, भक्त करने वाली है। सबसे आदर्श भक्त जो है, सबसे ऊंचे भक्त सारे अस्तित्व में, वो है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी से ज्यादा भक्ति भगवान की और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए अगर किसी को भक्ति करना है तो श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। प्रभुपाद जी बताते हैं कि कोई भक्त कितना भी गिरा क्यों ना हो, कितना भी पतित क्यों ना हो, अगर श्रीमती राधा रानी की कृपा उसे प्राप्त हो जाती है तो बहुत जल्दी उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। अगर राधा रानी केवल इतना कह दें कि कृष्ण इस भक्त के ऊपर कृपा करो, तो कृष्ण को करना ही पड़ेगा। इसलिए राधा कृष्ण दोनों की हम उपासना करते हैं, लेकिन शुरू में हम राधा रानी की कृपा की याचना करते हैं, इसलिए हरे कृष्ण कहते हैं। हरे कृष्ण का मतलब है राधा कृष्ण। जैसे हम हरे राम कहते हैं, अगर ये राम शब्द को हम हम प्रभु रामचंद्र जी मानते हैं तो सीताराम हो गए, और अगर कृष्ण मानते हैं राधा रमण तो फिर भी वो श्रीमती राधा रानी हो गई। तो हरे कृष्ण जब हम कहते हैं इसका मतलब है हम राधा कृष्ण की याचना करते हैं, क्योंकि राधा रानी पूर्ण शक्ति है और श्री कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। भगवान श्री कृष्ण कभी भी अपने अंतरंग शक्ति के अलावा किसी और का भोग नहीं करते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक संसार में किसी भौतिक चीज में रमण नहीं करते हैं, केवल उनके आध्यात्मिक शक्ति में रमण करते हैं। उनकी आध्यात्मिक शक्ति या अंतरंग शक्ति के अलग अलग कार्य रहते हैं और उनके अलग अलग कार्यों के अनुसार उनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जिस कार्य से वो अपने स्वतः के अस्तित्व को बनाए रखते हैं उसको संधिनी शक्ति कहते हैं, और जिस शक्ति जब